आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को होगी जारी। इसी के साथ पहले चरण की 8 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। प्रदेश की 4 रिक्त विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की हुई घोषणा। इन सीटों पर अलग अलग चरणों में होंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू कराने को लेकर प्रदेश में जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैद। और प्रदेश में सूखे की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न जिलों की तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। प्रदेश में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक विभिन्न चरणों में मतदान होगा। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के निर्वाचन की अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी और उसी दिन से प्रथम चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण के निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इस चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। तीसरे चरण के निर्वाचन की अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। इसी चरण में 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चौथे चरण की 13 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। वहीं पांचवें चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना 26 अप्रैल को जारी होगी। छठे चरण के निर्वाचन की अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। इस चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। सातवें और अंतिम चरण की अधिसूचना 7 मई को जारी होगी। इस चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इन सभी चरणों में अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 रिक्त विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। शाहजहांपुर की ददरौला सीट पर चौथे चरण में 13 मई को, लखनऊ पूर्व सीट के लिए पांचवें चरण में 20 मई को, बलरामपुर की गैसडी सीट पर छठे चरण में 25 मई को और सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट पर सातवें चरण में 1 जून को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 4 जून को होगी। राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार भाजपा प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के 10 वर्ष जनता के लिए परेशानी भरे रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार सरकार का अभिन्न अंग बन गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में देश और प्रदेश का विकास नहीं हुआ। इस बीच लखनऊ में आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सपा और बसपा के कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। इन नेताओं को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आज बैठकें आयोजित की गईं। इसी क्रम में वाराणसी के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव आयोग के द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की जानकारी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए किसी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न किया जाए। वहीं जौनपुर जिले में भी जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मादड़ ने लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर मेरठ जिले में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में मतदान केंद्र बनाए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिये। रामपुर में चुनाव आयोग के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जोगिंदर सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 50% मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग की जायेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों से भी निगरानी की जायेगी। सभी जिलों में भी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में भी विभिन्न प्रकार से मतदाता जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग और एएन कॉलेज के चित्रकला विभाग के विद्यार्थियों ने आज चेहरे पर चित्रकारी कर मतदान का संदेश दिया। इस मौके पर टैटू के जरिए भी लोगों को मतदान का महत्व समझाया गया और लोकसभा चुनाव में वोट डालने की अपील की गई। अमरोहा जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजन के स्वयंसेवकों ने फोंदापुर में मतदान के महत्व विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में सूखे की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न जिलों की तहसीलों में टेलीमीट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने बताया कि पहले चरण में सूखे से ज्यादा प्रभावित रहने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों की 100 तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसमें बुंदेलखंड के 7 जिलों और सोनभद्र तथा मिर्जापुर को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि यहां पर हर साल सूखे की संभावना बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों की सभी तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। इस संबंध में राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से अपर जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संघ सरकारवाहक दत्तात्रेय होसाबले एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक चुन लिए गए हैं। उनका चयन संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि समाज ने किया है। श्री होसाबले का कार्यकाल वर्ष 2027 तक होगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का 3 दिन का यह वार्षिक आयोजन नागपुर के रेशमबाग इलाके में स्मृति भवन परिसर में शुक्रवार से शुरू हुआ था, जिसमें संघ से जुड़े संगठनों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। मथुरा के बरसाना के प्रमुख श्रीजी मंदिर में आज बड़े धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। बरसाना की लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली इस लड्डू होली का ब्रज में विशेष महत्व है। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
ब्रज में लठमार होली की परंपरा बेहद प्राचीन है और बरसाना को इसका केंद्र माना जाता है। बरसाने की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। इसके एक दिन पहले लड्डू होली खेली जाती है। इसका भी अपना पारंपरिक महत्व है। बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं और इसके लिए एक दूत न्योता देने नंदगांव पहुँचता है, जो आज के दिन लौट कर बरसाना आता है। इस दूत को यहाँ पांडा कहा जाता है और जब ये पांडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्री जी मंदिर में पहुंचता है तो यहां मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं और बधाई स्वरूप पांडा पर लड्डू फेंकते हैं। उसे गुलाल के साथ तोहफे दिए जाते हैं। उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त भी पांडा के ऊपर लड्डू फेंकते हैं। इस होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से भक्त बरसाना पहुंचे और लड्डू होली का आनंद उठाया। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को होगी जारी। इसी के साथ पहले चरण की 8 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। प्रदेश की 4 रिक्त विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की हुई घोषणा। इन सीटों पर अलग अलग चरणों में होंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू कराने को लेकर प्रदेश में जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैद और प्रदेश में सूखे की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न जिलों की तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।